ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष दिन है, अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ क्या है? जिसके कभी भी क्षय नहीं होता है। आज कोई भी शुभ कार्य करने से कोई भी तो उसकी कभी क्षय, उसकी जो सुकृति व पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। आज यदि जपमाला जपा करोगे, जितने भी यदि शुद्ध भाव से अपराध रहित होकर जप करोगे, आपको निश्चित रूप में भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हैं, आज के दिन जो भी कुछ करोगे, क्योंकि ये अक्षय कहा गया, अक्षय तृतीया, ये हरिभक्ति विलास में विशेष रूप में सनातन गोस्वामी ने विशेष लिखते हैं हरिभक्ति विलास से, चतुर्दश विलास में लिखते हैं, मत्स्य पुराण से उद्धृत करते हैं। वैशाखे मासे शुक्लायां तृतीयायां जनार्दन जवान उत्पादयन मास युगंश कृतवान कृतम बहुलोका त्रिपथागा पृथिव्यां अवतारयत तस्यां कार्य जवेधोम जवै विष्णु समर्चयत जवान दद्यत द्विजातिभ्य प्रायतः प्रसादये जवान। कहते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, ये जो अक्षय तृतीया का दिन जनार्दन भगवान विष्णु ने जब अर्थात ब्रह्मा ने जब जो शस्य, जितने भी मुख्य शस्य, पांच मुख्य शस्य में से सबसे प्रधान शस्य फिर भी किसको कहते हैं, जव, जव की उत्पन्न किए थे। इसी दिन में सत्ययुग का प्रारंभ हुए हैं। कृत्य च ध्याय कृत, कोई कृत्य के अर्थ कोई सोचता कि तृतया, तृतया का अर्थ तृतया नहीं है। जो भागवत कहते हैं कृत्य च ध्याय तो विष्णु, कृतिका अर्थ सत्ययुग, सत्ययुग की प्रारंभ की जुवा है युगंच कृतवान कृतम, सत्ययुग की प्रारंभ हुई। बहुलो तिपथगामी गंगा, मैं तीनों लोगों को जो गमन करके आती है स्वर्ग मर्त्य पर पाताल में भी जाती है भगवती के रूप में, ये गंगा आज पृथ्व्यंग अवतारयत, आज पृथ्वी को स्पर्श की थी गंगा जी ने, आज पृथ्वी को स्पर्श की। आज जो कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आदि कार्य में यदि कोई जौ की विशेष रूप में आहुति देता है व जौ की खीर बनाकर व कुछ भगवान को अर्पण करता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हैं ब्राह्मण को विशेष रूप में जवान दद्यत दिजातिभ्य, दीजों को ब्राह्मण को विशेष रूप में पायस बनाकर खीर बनाकर उनको खिलाना चाहिए। हैं आज त्रेतायुग सत्ययुग की त्रेतायुग की भी प्रारंभ आज से हुई है, और प्रकृतांच त्रय धर्मा प्रभुताश्च प्रवर्तते, तीन वेद सुख रुक साम जदुर त्रिवेदमयी धर्म की भी आज से ही उत्पत्ति हुई है। आज के दिन कोई भी कार्य करते हैं अक्षय फल देने वाली है, अक्षया मुच्यते लोके तृतीया हरिवल्लभा, ये हरि भगवान हरि को अति प्रिय अतिथि है। इसी दिन में दाने स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे जपे पूर्वज तर्पणे, अर्थात पितरों को श्राद्ध देना, जे अर्चंती जवई विष्णु श्राद्धं कुर्वन्ति जत्नत तस्यां ददाति दानानि धन्यास्ते वैष्णवानरः, ऐसे मनुष्य धन्य धन्य है, वैष्णव की विशेष धन्यवाद की जाती है। आज के दिन सब कुछ करने के लिए कहा गया है, जिसके अक्षय फल आपको प्राप्त होती है, आज किसी पुण्य तीर्थ में पूर्ण स्नान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, दान देने से और भगवान की अर्चन करने से, पितरों को श्राद्ध देने से, जप करने से व किसी भी प्रकार के भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य किया जाती है, इसकी आज अक्षय फल प्राप्त होती है। उसका फल कभी क्षय नहीं होता, उसका सुकृति कभी क्षय नहीं होती। आज के दिन सत्ययुग की प्रारंभ हुई, गंगा पृथ्वी को स्पर्श की, तीनों वेद धर्म के साथ आज ही उत्पत्ति हुई, और इसलिए आज के दिन परशुराम जी की भी आज आविर्भाव तिथि है, परशुराम जयंती। आज के दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की रथ का निर्माण प्रारंभ की जाती है, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा की जो रथ के निर्माण का शुभारंभ होती है। आज गणेश जी ने महाभारत का लिखना प्रारंभ किया था, व्यासदेव जी ने बोल रहे थे गणेश जी ने प्रारंभ किया लिखना। आज ही द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुई थी, कोई कहते अक्षय पात्र सूर्यदेव से प्राप्त हुई, कई जगह पर कहते कि नहीं भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुई, तो आज अक्षय पात्र द्रौपदी को प्राप्त हुई थी। ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही जव की उत्पन्न किए थे, इसे बहुत कुछ आज के दिन का महिमा है अक्षय तृतीया। तो इसलिए आप सभी आज के दिन थोड़ा सावधानी से कुछ सुकृति कीजिए, विशेष रूप में क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नाम की जप करना चाहिए, यज्ञानंग जप यज्ञ अस्मिन, जितने भी भगवान को प्रसन्न करने की विधि है इसमें सर्वोत्तम विधि है जप करना, यज्ञानंग जप यज्ञ अस्मिन, भगवान के नाम सावधानी से आज जप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, भागवत की पारायण करें, किसी भी प्रकार के भगवान की विशेष सेवा, चंदन घिस की कुछ नहीं तो चंदन घिस के हम भगवान को अधिक से अधिक दे सकते हैं भगवान के शरीर में लिपने के लिए, तो इस प्रकार सब चंदन कोई भी सेवा कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, श्राद्ध भी कर सकते हैं, जो कुछ करोगे इसका अक्षय फल प्राप्त होता। ज्योतिष शास्त्र में आज कहते हैं अणपुच्छा तिथि, क्या कहते हैं अणपुच्छा, मैंने पूछने का कोई आवश्यकता नहीं है, आज ज्योतिष की पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आज कोई भी कार्य करोगे चाहे गृह आरंभ करो, विवाह, जो भी जितनी किसी भी प्रकार के शुभ कार्य आज आरंभ की जा सकती है, आज का दिन ज्योतिष के पास जाकर मुहूर्त तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। सुखते अनुपुच्छा तिथि, आज तिथि में किसी भी कार्य आप संपादन करोगे इसमें निश्चित रूप में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हरिवल्लभा तृतीया हरिवल्लभा, ये भगवान हरि की अत्यधिक प्रिय तिथि है, इसलिए हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इस तिथि का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। हरे कृष्ण। साथ साथ आज चंदन यात्रा, जिस कक्षा में जो विशेष चर्चा की जाएगी, चंदन यात्रा आज के दिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के शरीर में चंदन का पहला लेपन माधवेंद्रपुरी ने प्रारंभ की थी। कहाँ पर? कहाँ पर? खीरचोर गोपीनाथ मंदिर रेमुणा में है। रेमुणा में जो गोपीनाथ मंदिर है, उस गोपीनाथ जी के विग्रह त्रेतया युग से भगवान रामचंद्र जी के द्वारा वो निर्माण की गई विग्रह को स्वयं रामचंद्र जी ने अंकित किए हैं। त्रेतया युग से जितने भी कृष्ण विग्रह हम देखते हैं, सारे कृष्ण विग्रह तो प्राय द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में वज्रनाभ ने स्थापना किए। द्वापर के अंत में चाहे मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ, श्रीनाथ जी, नाथदार जितने भी बा वहाँ से उड़ुपी में कृष्ण, ये सब द्वारका से ही आए हैं। लेकिन ये गोपीनाथ विग्रह ऐसा है, ये इसको भगवान रामचंद्र जी ने त्रेतया युग में हैं इसको स्थापित किए हैं, क्योंकि चित्रकूट में जब भी सीताराम बड़े आनंद के दिन बिता रहे थे चित्रकूट में, तभी शाम के समय एक दिन भगवान ने ग्वाल बाल लोगों को देखी कि गाय के पीछे गाय को हाँकते हुए जाते हुए देखकर उनके मुख से मुस्कान आ गई सूर्यास्त के समय। सीता जी ने पूछे कि आप क्यों हंस रहे हैं? अभी हंसने का कोई कारण नहीं है, आपके मुख में मुस्कान कैसे आ गया? तो ना भगवान ने बताया कि अगले जो युग आने वाला है द्वापर युग, मुझे भी ऐसा ही गाय के पीछे भागना पड़ेगा, मैं भी ऐसे ही ग्वाला बन के गाय के पीछे भागूंगा। तो इसलिए उन्होंने पूछे कि कैसे कैसे लीला करोगे, गाय के पीछे कैसे भागोगे, कैसे गोपाल बनोगे, हमको थोड़ा बताइए चित्र। उनके बार बार आग्रह प्रकाश करने से भगवान रामचंद्र जी ने एक विशेष शिला के लेकर शिला के ऊपर ये विग्रह को अंकित किए थे अपने धनुष के तीर पर, ये गोपीनाथ जी के विग्रह को हैं। जो आप जाओगे रेमुणा में, वो एक विग्रह नहीं है जैसे हमें मंदिर, नहीं, एक शिला के ऊपर अंकित की गई है, एक शिला एक पत्थर के ऊपर, उसमें बीच में गोपीनाथ है, कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं, अष्टगोपी, अष्टगोपाल, ये सब चित्र है, गाय कंस चारण को वध करते हुए सारे लीलाओं की चित्रांकन उसी पत्थर के ऊपर की गई है, बीच में गोपीनाथ है। तो इसलिए ये विग्रह विशेष विग्रह जिनके जिनमें माधवेंद्रपुरी ने सबसे पहला चंदन लेप किए थे, इसके कहानी आस्ते आस्ते हम चैतन्य चरितामृत से जिस प्रकार माधवेंद्रपुरी की भक्ति की चैप्टर है मध्य लीला के चौथा अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, तो उसी के संक्षेप में वर्णन की जाएगी, विस्तार से समय नहीं होगा। तभी आप जानते हैं माधवेंद्रपुरी भ्रमण करते करते ब्रज में पधारे थे कि माधवेंद्रपुरी भ्रमिते आईला मथुरा नगरी, भ्रमण करते करते मथुरा नगरी में आए। माधवेंद्रपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु है, चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी के गुरु थे लक्ष्मीपति तीर्थ, इस प्रकार ये परंपरा माधवाचार्य से जुड़े हुए थे। तो माधवेंद्रपुरी आए ब्रज में, गिरिराज की परिक्रमा की है, परिक्रमा करके ही शाम के समय गोविंद कुंड में स्नान किए, स्नान करके ही उस कदम वृक्ष आज भी है, माधवेंद्रपुरी की बैठक आज भी है, वहीं पर बैठकर अपने माला में भगवान के नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माधवेंद्रपुरी का विशेषता क्या था? हमारे जो अन्य भक्त लोग तो माधुकरी करी खा लेते ब्रज में, आते ब्रज में चलो ब्रजवासियों से माधुकरी करके अपने पेट भरण कर लेते पूर्ण कर लेते, लेकिन माधवेंद्रपुरी किसको मांगते भी नहीं थे, इनकी अजाचित वृत्ति था। अजाचित वृत्ति का अर्थात मांगना नहीं, भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम, गोपाल के काम में मैं क्यों हस्तक्षेप करूँ? इसलिए माधवेंद्रपुरी के नियम था, वो केवल भजन करते थे, दिन रात भगवान के नाम कीर्तन में लगे रहते थे, नाम भजन में, लेकिन किसी को खाने के लिए कभी मांगते नहीं थे। अजाचित तो कोई देगा तो खाए, नहीं दिया तो फर्स्ट व्रत रखे, नाम जपा करना। तो उस दिन पूरा सुबह सुबह से भूखे थे, गोवर्धन परिक्रमा करके ही गोविंद कुंड में स्नान करके ही वृक्ष के नीचे बैठकर कदम वृक्ष के नीचे नाम संख्या हैं कर रहे थे, नाम जपा कर रहे थे। लेकिन उस समय और भगवान को सहन नहीं हुआ, स्वयं कृष्ण ने एक किशोर बालक वेश में आए, 13-14 साल की किशोर बालक वेश में हैं आए, पीताम्बर पहने हुए थे, ग्वाला लाठी बांसुरी कमर में हैं, एक लोटा एक हाथ में, तो दंडा पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में एक दूध के लोटा लेकर आए। कहे अरे बाबा तो कैसे भजन करता है, क्या व्रत रखा है, हैं ऐसे ही भूखे क्या भजन होता है, गोपाल का भजन भूखे होता है। ब्रज में तो जो आते हैं लोग बाबा लोग माधुकरी खा लेते, फिर माधुकरी करी की रोटी खा लेते, फिर भजन करते हैं। तू तो किसको मांगता नहीं है, हैं सुबह से भूखे बैठे हुए इधर हैं, यार भूखे में भोजन होता है, लो लो ये दूध लाया तेरे लिए, दूध पी ले। पर लेकिन माधवेंद्र भी तो आश्चर्य देखने लगे, बोले अरे, लेकिन देखते ही आकर्षित हो गए हैं, गोपाल को देखते ही, मैंने भगवान को देखते ही, अब मुस्कान था भगवान के मुख से, मुस्कुरा रहे थे। माधवेंद्र पूरी साहस करके बोले कि अच्छा आपको कैसे पता लगा मैं भूखा हूँ, मैं खाया नहीं खाया तो आपको कैसे पता चला। भगवान कहे कि ये पकड़ लेगा अभी मुझे, भक्त के पास में छुपना मुश्किल है। तो बोले ऐसा बात नहीं है, ये स्त्रियाँ सो माता जी लोग आए थे ना गोविंद कुंड में स्नान किए, स्नान करके सब पानी लेके गए, तो वो लोग ने कहे कि देखो हमें देखा गोविंद कुंड के क्या वो किनारे एक बाबा बैठा है, लगता कि खाया पिया नहीं है, हैं इसलिए मेरे माँ ने दूध के लोटा देकर बोला कि बाबा को दे किया दूध पी, और तुम जल्दी जा दूध पी के धो लोटा को धो के रखना, मैं बाद में आके लोटा ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे गाय से दूध निकालना है, समय हो गया, गो दहन करने के समय हो गया, मैं आ रहा हूँ। तुम इसको ऐसे कह के थोड़ा सा तिरछी नज़र में घूम के माधवेंद्रपुरी को देख कर फिर चल दी मुस्कुराते हुए। माधवेंद्रपुरी एक जो नज़र में देखा था बड़ा आकर्षित हो गए, बोली इस संसार में कोई सांसारी व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन ये बालक कौन है, ये इसको पता कैसे चला कि मैं भूखा हूँ, दूध की लोटा लाकर दे गया, और इसका डिटेल एड्रेस भी मैं पता नहीं लगा पाया, हैं खाली कहा कि मैं ये पास में गांव में रहता हूँ, लेकिन अभी दोबारा आएगा ना इसको डिटेल एड्रेस लूँगा, उसका नाम क्या है, पिताजी के नाम क्या, माताजी के नाम क्या, कहाँ रहता क्या करता, डिटेल एड्रेस लूँगा। ऐसे सोचकर क्लांत तो थे, और दूध भूख भी तो लग रहा था, और दूध का लोटा मिल गया तो क्या किए, दूध पिए हैं। लेकिन आज के दूध तो बहुत बार जिंदगी में पिए थे, लेकिन आज के जो दूध पी रहे थे, एक एक ढुक दूध पीते ही उनके शरीर में पूरा क्या होता था, रोमांच आ रहा था, पुलकित हो रहा था, अष्टसात्विक विकार अपन के शरीर में आ गया, बलात्कार से उनके मुख से कृष्ण नाम उच्चारण होते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आंख से आनंदाश्रु बहने लगा। माधवेंद्रपुरी बोले कि अरे कैसा दूध है, ऐसा दूध तो मैं कभी इतनी सारा जिंदगी में कभी नहीं पिया था, ऐसे दूध दूध पीते ही उनके शरीर का सारा क्लांति मिट गया, शरीर में एक अद्भुत सात्विक आनंद प्रकटित हो गया, पूरा शरीर रोमांचित को पुलकित आनंद में कंपनी लगे, हैं खड़े होकर तुरंत नृत्य करने लगे, और कहे कि अरे ये अद्भुत दूध कहाँ से मिला, ये जो बालक है लग रहा था ये कोई साधारण नहीं है। बड़े सावधानी से स्वयं को सतर्क करके लोटा को धोए, अच्छा से धो के पास में ऐसे पालट कर रखे, बोला था लोटा तो लेने आएगा ना, बोल के गया है, अब बैठ कर पास में फिर माला लेकर अपना जपा करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपा करते करते पूरी रात ही बीत गया, प्रतीक्षा कर रहे बालक आएगा हैं, गोपाल आएगा लोटा लेके जाएगा, बोला चरा गाय से बोला था गोदहन करके फिर आए के लोटा ले जाएगा, अभी तक आया नहीं। पूरे रात जग कर बैठे थे, थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में झापसा से नींद आ गया, तो अभी देखिए कि तुरंत वही गोपाल बालक स्वप्न में आ गया, और माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़कर कहा कि माधवेंद्र देख मैं कौन हूं, तू मेरे बारे में जानना चाहता था, देखो मेरे नाम गोपाल है, गोपाल, मैं ये गोवर्धन नाथ हूं, ये गोवर्धन पर्वत की पर रहता था पहले, मेरे प्रपौत्र बज्रनाभ ने मुझे यहां पर स्थापना करके मेरी सेवा पूजा का व्यवस्था किया था, लेकिन अभी थोड़े से कुछ 100 साल पहले मुगल व मुसलमान लोगों का आक्रमण के भय से पुजारी लोग ने मुझे वहां से लाकर झाड़ी के नीचे देख हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, बोले देख ये शंकरसन कुंड के बाजू में जो ये झाड़ी है, झाड़ी के नीचे मुझे ऐसे मिट्टी के नीचे छुपा कर भाग गए, तब से और कोई आया ही नहीं है, पुजारी लोग तो भाग गए मुसलमान के भय से मुझे यहाँ छोड़ के, लेकिन मैं यहाँ पर कितने दिनों से सालों से वो मैं प्रतीक्षा करके पड़ा हूँ, कब मेरी प्रेमी भक्त कोई आएगा मेरी पूजा करेगा, कब माधवेंद्र आएगा और मेरी सेवा करेगा, अभी तू आ गया, अभी मेरे सेवा पूजा का प्रकट कर, मैं चाहता हूँ कि तुम ये गांव वालों को सब साथ में लाकर मुझे ये झाड़ी के नीचे मिट्टी के नीचे से फिर उद्धार करके ही फिर गोवर्धन की पर्वत के ऊपर फिर मुझे स्थापना कर दो, है मुझे वहाँ पर स्थापना करके मेरा सेवा पूजा का व्यवस्था फिर कर लो, हैं फिर अन्नकूट का महोत्सव मनाओ, हाँ मेरे कृपा से तू सफल हो जाएगा, हैं और तेरी कीर्ति ये जगत में व्याप्त हो जाएगा। इतना ही कहकर अंतर्धत नींद भी तोड़ गया माधवेंद्रपुरी का, उठे उठ के देखे कि अरे रोने लगे, किस लिए रोने लगे, हैं साक्षात भगवान आके मेरे सामने दर्शन देकर गए, मुझे दूध की लोटा देकर गए और मैं इनको पहचान नहीं पाया, भक्त होकर मैं भगवान को पहचान नहीं पाया तो मेरे भक्ति के धी के बहुत अपने को धिक्कार करते हुए भगवान भगवान के हाथ से सेवा लिया, हैं मैं भगवान की सेवा के लिए है कि भगवान मेरा सेवा के लिए है, भगवान ने मुझे स्वहस्त में दूध की लोटा दे के गए, मैं पिया और भगवान की सेवा स्वीकार किया, भगवान मेरे से बातचीत किए, देखे मुस्कुराए मुझे देखकर, फिर भी इतनी अधम हूं मैं प्रभु को पहचान नहीं पाया, ये कहकर बहुत रोने लगे। इसके बाद कहे कि चलो अभी रोने से क्या होगा, लेकिन आदेश को अवश्य पालन करना चाहिए, ये कहकर तुरंत गांव में गए, हैं वो गांव में जाकर सब लोगों को गोविंद कुंड के आसपास को सब गांव में लोगों को सब जगाए, हैं कहे कि देखो देखो तुमको पता नहीं है तुम्हारे गाँव की भगवान जो है गोपाल ये यहाँ पर रहता है, ये शंकरसन कुंड के झाड़ी के नीचे रहता है, चलिए चलिए गोपाल को वहां से निकालेंगे। सब बूढ़े बूढ़े लोग जो थे, हाँ हम लोग सुने थे ये गोवर्धन के ऊपर पहले गोपाल रहता था और मुसलमान की भय से वो कहाँ चला गया, मैंने उनके पुजारी लोग कहाँ इनको छुपा दिए क्या किए, बोले मुझे कल रात को स्वप्न में आया है गोपाल आके कहा कि झाड़ी के नीचे से इनको निकालना पड़ेगा, ला के फिर गोवर्धन के ऊपर इनको फिर प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, सेवा पूजा की अर्चना व्यवस्था करना पड़ेगा। सारे ब्रजवासी उत्साहित हो गए, माधवेंद्रपुरी बोले कि सब जंगल को काटने के लिए क्या रहे हथियार सो लेके चलो, हैं सो बहुत घंचे जंगल हो गया था, सो कांटा की वृक्ष को काटते काटते रास्ता बनाकर फिर जो शंकरसन कुंड के किनारे हैं वो झाड़ी के नीचे गए, थोड़ा सा मिट्टी ऐसा ही हैं बाहर करके बाहर फेंकते ही, ज़्यादा गंभीर में नहीं थे, मिट्टी थोड़ा सा मिट्टी बाहर करते ही गोपाल के सुंदर विग्रह देखने लगे। सारे ब्रजवासी लोग ने तो हाँ बड़े प्रसन्न हो गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ब्रजवासी र सहज प्रीति गोपालेर प्रति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति, हैं गोपाल के सहज प्रीति किसके प्रति, ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों के सहज प्रेम है गोपाल के प्रति, गोपाल भी सहज प्रीति है किनके प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, ब्रज जन भय हरि, ब्रजवासियों की रक्षा करना ये गोपाल का मुख्य काम है, हैं ब्रजवासियों को बड़ा प्रेम करता है, तो इसलिए ब्रजवासी लोग ने बड़े प्रेम से वो हाँ उन्मत्त हो गए गोपाल के सुंदर विग्रह को देखकर, माधवेंद्रपुरी को सभी लोग जय जयकार करने लगे, जय माधवेंद्रपुरी की जय, माधवेंद्रपुरी की जय, सभी ब्रजवासी लोग ने माधवेंद्रपुरी को आलिंगन किए, हैं और सभी लोग कहे कि आप हमारे गोपाल को ढूंढ के हमको बताया, चलिए गोपाल को माधवेंद्रपुरी स्वयं भी गोपाल को पकड़े और सारे ब्रजवासियों की सहायता से सो तागड़े तागड़े लोगों को पकड़ा के गोपाल को निकाले, निकाल फिर उठा के लेके कहाँ रखे, हैं आज भी गोपाल जी का पुराना मंदिर है, अभी तो गोपाल अभी गोवर्धन में नहीं है, कहाँ है, नाथ द्वारा में, अभी श्रीनाथ जी के रूप में अभी हजार हजार लोग डेली जाते उधर हैं, नाथ द्वारा में डेली इनकी पूजा बड़े थाट बाट में होता है, हैं। गोपाल जी स्नान नहीं करते, जमुना पानी केला दूसरे पानी में स्नान नहीं करते हैं, जानते। गोपाल जी जो है अभी भी श्रीनाथ नाथ द्वारा के रहते, नाथ श्रीनाथ जी के रूप में डेली मथुरा से पानी जाता है विश्राम घाट से, इनके बस हर दिन चलता है इधर है, हर दिन आता है नाथ द्वारा से मथुरा, मथुरा से नाथ द्वारा, डेली इनका मुख्य काम है, वहाँ जाएगी यात्री भी ले जाते हैं लेकिन मुख्य काम विश्राम घाट से जाकर चांदी की गगरा लेके आते हैं, दो गगरे पानी भर के लेके जाते हैं, यानी कि एक बार लेके स्टॉप कर दिया ऐसा नहीं, डेली आएगा, डेली जाएगा पानी। से गोपाल मथुरा के नहीं, वो जमुना के जल में ही केवल इनके अभिषेक होता, दूसरे जल में नहीं स्नान करते। अभी वो तो श्रीनाथ जी के रूप में है, लेकिन उस समय इधर ही थे तो इनको उठाकर लेकर फिर वही जतिपुरा गांव के ऊपर, आज भी वो मंदिर है, पुराना मंदिर है, वो गांव को जतिपुरा कहते थे क्योंकि माधवेंद्रपुरी उसी गांव में रहते थे, जब वही ब्रज में रहते थे तो वहीं रहते थे, जति का अर्थ सन्यासी, सो माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर वो गाँव के नाम क्या हुआ, जतिपुरा, जति माधवेंद्र जी ने वहीं रहते थे, माधवेंद्रपुरी रहते थे। तो आज भी पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है, तो सारे ब्रजवासियों की तागड़े तागड़े ब्रजवासियों की सहायता से माधवेंद्रपुरी स्वयं इनको लेकर ऊपर पहाड़ के ऊपर एक पत्थर के ऊपर इनको खड़ा किए और पीछे से एक बहुत बड़े पत्थर सहारा देकर रखे, भगवान को खड़ा कर दिए गोपाल को। गोपाल प्रकट हो गया, ब्रजवासी लोगों का तो सहज प्रीति गोपाल, सब माताएं सुबह आ गए, पिताजी आ गए, ब्रज की रसिया गाकर सब नाचने लगे हैं, ब्रज की लेखे ब्रजवासी लोग कैसे खुश होते हैं, ब्रज की रसिया गाने लगे सब गोपाल के नाम से, तो इनका लीलाओं के सारे गीत गाते गाते सब नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने गाने लगे हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी कहे कि अरे नाचो गाओ, सब लोग थोड़े माताजी माता लोग नाचे गए, आप लोग सुबह आओ इधर, गोपाल जी को पहले स्नान कराना पड़ेगा, इतनी सारे मिट्टी लगा हुआ शरीर में है, बहुत सालों सालों से मिट्टी के अंदर पड़े था, इसलिए बनना था कि 900 घड़े बड़े बड़े मटका में 900 घड़ा पानी भर के लेके गए, कहाँ से लेके गए, गोविंद कुंड से, और स्वस्थ में माधवेंद्रपुरी घिसते अन्य ब्रजवासी ब्राह्मण की सहायता से गोपाल को पूरा शरीर को साफ किए, पहले हैं गोविंद कुंड के पानी में पूरा शरीर को घिसते मिट्टी को सब साफ किए। इसके बाद उन्होंने अभिषेक भगवान की कैसे करना है ये माधवेंद्रपुरी ने सिखाया, सबसे पहले इनकी पंचगव्य अभिषेक किए, पंचगव्य अभिषेक किया जो पांच चीज गाय से होता है, दूध दही घी गोबर और गोमूत्र, पहले गोबर में शरीर को पूरा लिपाए, इसकी पद गोमूत्र में फिर इसको धोया जाता है, सब पवित्र, देखिए ये गाय का मल मूत्र भी पवित्र होता है जो कि भगवान की अभिषेक में ही उपयोग की जाती है, हैं, इसलिए गाय कितनी बड़े प्रिय माने पवित्र प्राणी है, इसलिए पहले पंचगव्य अभिषेक की जाती है, इसमें पहले गोमूत्र और गोबर है, माँ जसोदा भी क्या करती थी कृष्ण को, हैं, जो ब्रह्मांड देखी माँ कन्या के मुख में, बोला कुछ लग गया भूत, कुछ हो गया मेरे लाला को, तुरंत गोमूत्र में स्नान कराई और गोबर पूरा लिप दी शरीर में, लिप के फिर स्नान। तो देखो तो गोपाल को इसलिए माधवेंद्रपुरी ने पहले गोमूत्र ने से गोबर और गोमूत्र में स्नान कराए, हैं, गोबर लिप कर पूरा शरीर को गोबर लिप कर फिर गोमूत्र में स्नान कराए, फिर दूध फिर दही हैं फिर घी, घी में बहुत अच्छा से इसको मालिश किए शरीर को, हैं, ऐसे मालिश करके घी की पूरा चिक्कण किए शरीर को, फिर उसके बाद फिर बोले और जल लाओ, फिर गोविंद कुंड के जल लाकर 900 घड़ा जल हैं फिर इनको दोबारा स्नान कर अच्छा से स्नान कराए, स्नान कराने ये पंचगव्य अभिषेक हो गया। इसके बाद फिर पंचामृत अभिषेक किए, हैं, पंचामृत में दूध दही घी तो शामिल होता, इसके साथ मधु और शक्कर गुड़ के पानी ये भी उसमें शामिल किया जाता है। तो पहले पंचगव्य अभिषेक करके फिर पंचामृत अभिषेक किए, हैं, फिर दूध में स्नान कराए, दही फिर घी हैं फिर गुड़ के जल नर्सरी घी के बाद में मधु के बाद गुड़ के जल, फिर इसके बाद स्वच्छ जल में पवित्र जल में गोविंद कुंड के स्वच्छ जल में फिर इनको छान के पानी लेते थे, हैं, वर्णन आता कि पानी को ऐसा लेके डालते नहीं थे, पानी को छान कर छान छान के लेके जाते थे पूरे पवित्र क्लीन वाटर, अरे इनको ऐसे ऐसे ही स्नान कराए हैं। स्नान करने के बाद तो भूख भी लगेगा ना, गोपाल को भूख लग गया हैं। गोपाल बहुत सुंदर दिखने लगे चित्ते मने, और उनको वस्त्र था, ब्रजवासी लोग ना उन्मत्त होते, ब्राह्मण लोग ने भाग भाग के घर से, किसके नया वस्त्र था हैं, पीताम्बर था लेके आए, गोपाल को वस्त्र पहनाए सही हैं, ग्वाला के जैसे सब पहनाए, इसको पीताम्बर पहनाकर वस्त्र उत्तोली डाले कंध पर। और कई लोग जब से यहाँ से अभिषेक ले लगे हुए थे लोग माधवेंद्रपुरी, पहले कुछ लोगों को बोले थे देखो अभिषेक के बाद में गोपाल को भोग लगेगा, इसलिए कुछ लोग कुकिंग करो हैं, कुकिंग में सब लगे हुए थे, दस कम से कम 10-12 लोग राइस बनाने में लगे हुए थे। जो गोपाल प्रकट हुआ घर से जाकर गांव वाले सब आसपास गांव सब चावल दाल आटा सब सब भर भर के लेके आके जमा करते थे, और गोपाल खाई गया इसलिए सब हैं पहाड़ के समान चावल हैं, चावल कुकिंग करके सब डालते थे नीचे पत्थर थे, पत्थर के ऊपर धोकर इसके ऊपर पलाश की पत्ता है, पलाश पत्ता डाल के हैं, कहते केला पत्ता पलाश पत्ता ऐसे डाल के उसके ऊपर सो राइस जमा करते थे। और फिर डाल तो पूरा तलाव जैसे ऐसे बनाकर उसमें डाल डालते थे, सब्जियाँ भेरी भी बहुत अलग अलग वेराइटी का सब्जियाँ, और ब्रज में विशेष रूप में मिठाई के लिए ब्रजवासी ब्रज के लोग फेमस हैं, बहुत वेराइटी के पेड़ा संदेश मीठा माने कई प्रकार के हैं, मिठाई कचौड़ी सब नमकीन मिठाई सब बढ़ गया, लाखों लोगों की खाना तैयार हो गया हैं, तैयार हो गया खाना। स्नान करने के बाद सब खाना भी लाकर गोपाल के सामने चारों साइड रखा गया, ब्रजवासियों को याद आ गया जैसे 5000 साल पहले अन्नकूट किया था कौन, नंद महाराज ने अन्नकूट किए थे है? इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा करके जो अन्नकूट जैसे मनाए थे सब लोग को स्मरण हुआ। आज तो माधवेंद्रपुर की कृपा से गिरिराज के पास में दोबारा अन्नकूट प्रकट हुआ है, है? लेकिन सभी लोग देखते थे माधवेंद्रपुरी बड़े प्रेम से जो गोपाल को अर्पण किए कहे कि गोपाल देखो जितनी संभव इतना तुमको, तुम तो बहुत कुछ खाने वाले हैं, हमारे पास जितना है इतना ही दिए, इसको स्वीकार करो हैं। फिर भी लाखों लोगों की खाना था, लेकिन सभी लोग देख रहे थे सब कुछ तो भूखा, गोपाल तो बड़ा भूखा था, सारे को सारा क्या खा गया एक सेकंड में हैं, जैसे सब देख रहे थे सारे पात्र भरा था और एक क्षण में सारे पात्र खाली हो गया हैं। जैसे नंद महाराज की अन्नकूट में सब खा के फिर मांगे क्या बोले, आनी और लाओ। इसलिए गांव के नाम भी हो गया क्या आनी और हैं। ये आनी और गांव में नंद महाराज अन्नकूट बनाए थे, और जतिपुरा गांव में दूसरा साइड में माधवेंद्रपुरी अन्नकूट बनाए थे। इसलिए जो वल्लभ संप्रदाय के लोग उस साइड को गोविंद गोवर्धन का मुखारविंद मानते हैं, उस साइड माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट बनाया था, और इस साल आनी और गांव की साइड में कौन अन्नकूट बनाया था, नंद महाराज ने मनाए थे, इसलिए इसका नाम आनी ओर। वो साइड दूसरा साइड का है जतिपुरा माधवेंद्रपुरी वहाँ रहते थे, वही वो अन्नकूट मनाए थे। तो इसलिए सारा देखते देख रहे थे ब्रजवासी लोग ने सब खा लिया गोपाल, लेकिन फिर बात में सब फिर ऐसे जैसा था ऐसा ही भर गया है, खाया लिया, खा लेने के बाद फिर सब भरा हुआ। सब लोग सोचते थे अरे सारे गोपाल खा लिया, हम लोग सुबह से इतने भूखे में इतने हमें काम में लगे हुए, हमारे लिए तो कुछ भी छोड़ा नहीं लेकिन माधवेंद्रपुरी हंसने लगे, थोड़े समय देखते ही तुरंत फिर जो खाली पात्र था सभी अपने आप फिर भर गया है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णत पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। भगवान खाने पर भी खाते हैं, लोग को दिखाने के लिए देखो मैं खाया कि नहीं, लेकिन ये दूसरे क्षण में फिर भर गया, जैसे था ऐसा ही था हाँ ऐसा ही रह गया। पूर्ण वस्तु भगवान सदा पूर्ण रहते हैं, एक प्लस वन, वन माइनस वन। ये आध्यात्मिक नियम है हैं। तो इसलिए सब ब्रजवासी लोग तो माधवेंद्रपुरी कहे कि ठीक है अभी गोपाल भोजन किया, गोपाल को थोड़ा रेस्ट कराते, गोपाल को रेस्ट कराए थोड़ा सा सही क्या करेंगे, ताड़ के सब बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं काट के सही थोड़ा साइड में सही टेम्पररी क्या बाड़ जैसे लगा दिए, लगा के फिर उसी के अंदर ऊपर एक छाया के लिए कुछ डाल दिए घास, गोपाल को शयन कराया, कहे कि अभी तुम लोग भोजन करो है, पहले ब्राह्मण वैष्णव को खिलाया और सारे ब्रजवासियों को बड़ा बैठा कर लाखों लाखों लोग बड़े प्रेम से खाए हैं, सभी लोग इतनी प्रेम से भोजन कर रहे थे और सभी लोग क्या कहते थे, जय गोपाल, जय गोपाल, मालवेंद्रपुरी की जय। सब ब्रजवासी लोग ना जय है, राधे राधे है, राधे राधे गोपाल है, सब जोर से ध्वनि दे रहे थे, सो खिलाए। लेकिन ऐसा ही दूसरा दिन फिर दूसरे गांव वाले आ करके काज और नकुट हम करेंगे, सब ब्रजवासी आके झगड़ा हो गया, सारे 84 को ब्रज में लोग इतनी जमा हो गए, सभी लोग कहे कि हम अन्नकूट करेंगे। माधवेंद्र पुरी सबको बैठा कर सारे को इष्ट गुष्ट करके ब्रज का जितनी गांव, एक एक गांव को एक एक दिन दायित्व दे दिया। किसका? गोपाल के। एक एक भक्तों को मैनेजमेंट भी करना आता है, तो कहे कि जितनी ब्रज का गाँव है हर गाँव का एक एक दिन टर्न लगा दिए। तो फिर कॉम्पिटिशन करके चलने लगा किसका कौन ज्यादा खिलाता है गोपाल को, है? तो इसलिए हर दिन अन्नकूट गोपाल के पास प्रत्येक दिन अन्नकूट होने लगा, है डेली अन्नकूट। गोपाल बड़ा खुश में है रहे। सो भी मथुरा से कोई धनी आदमी था तो कोई राजा आके थोड़ा सा छोटा मंदिर बना दिया, कोई गोशाला बना दिया। ब्रजवासी लोग जो आते थे गोपाल को देखने के लिए, एक एक गाय भी लाकर दान दिए। ऐसे एक एक गाय देते थे, हजार हजार गाय हो गया, गोपाल का विशाल गोशाला बन गया, है बहुत बड़ा घोसला बन गया, लाखों संख्या की गाय हो गए गोपाल के पास में, और दूध दही घी और कोई शॉर्टेज नहीं रहा है। और गोपाल अपना व्यवस्था सब कर लिया। लेकिन 2 साल तक ऐसे ही गोपाल की सेवा चलते रहा है। 2 साल के बाद एक दिन गोपाल फिर स्वप्न में आया। किसके स्वप्न में? माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में। तभी आकर कहने लगा है, एक किरात को एक दिन गोपाल स्वप्न में आकर कहे, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, गोपाल कहे पुरी आमार ताप नहीं जाए, मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। अनुवाद आत्मज प्रभुपाद जी के द्वारा, स्वप्न में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ है, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर ये चंदन का लेप करो। कौन कहा? गोपाल जी ने कहे माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में। तात्पर्य, गोपाल विग्रह अनेक वर्ष तक जंगल में दबे पड़े रहे थे। अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उनका हजार घड़े पानी से अभिषेक कराया गया था, फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी, इसीलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में और नीलगिरी पहाड़ियां कभी कभी मलय पर्वत कहलाती है। मलय जो शब्द मलय प्रांत के उत्पन्न चंदन का सूचक है। कभी कभी वर्तमान मलेशिया देश को भी मलय कहते हैं। पहले इस देश में चंदन भी उत्पन्न हो रहा था, किंतु अभी उसके वहाँ के लोग रबड़ का वृक्ष लगाने लाभप्रद मानते हैं। यद्यपि किसी समय मलेशिया वैदिक संस्कृति की प्रचलित थी, अब वहाँ पर के निवासी मुसलमान हो गए हैं। अब मलेशिया, जावा, इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति प्राय लुप्त हो चुकी है। तो गोपाल जी ने कही कि मलय जो चंदन है, कहे कि देखो मेरे शरीर बहुत गर्मी है, चाहे तू हजार घड़ा पानी में मेरी को स्नान कराया, पंचगव्य अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और जितने पानी में होने पर भी ये इतने 100-100 साल मिट्टी का नीचे पड़ा था, मेरा शरीर पूरा अभी तक भी गर्म है। अब गर्मी का सीजन अभी आ गया, इसलिए तुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे शरीर में चंदन लेपना। कौन सा चंदन? मलयज है, मलय जो चंदन है। कहते कि मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए, ऑर्डिनरी चंदन नहीं, मैसूर चंदन नहीं, है मैसूर चंदन नहीं, कहाँ का चंदन? मड़ाए चंदन, बाजार से भी खरीदना नहीं। अगले शब्द में कह रहे कि कहाँ मड़ाए जो चंदन मिलेगा उसका ठिकड़ा भी बता रहे। मड़ाए जो आन जाया नीलाचल हईते अन्य हईते न हे तुमी चल तुरीते। कहते कि मड़ाए जो चंदन कहाँ मिलेगा, नीलाचल में मिलेगा। ये मड़ाए जो चंदन जग गर्मी का दिन में जगन्नाथ जी के शरीर में लेप दी जाती है, मुझे वही चंदन चाहिए है? क्योंकि कहते कि प्रभुपाद जी कहते कि मड़ाए प्रदेश नीलगिरी पहाड़, एक तो जगन्नाथ मंदिर जहाँ जिस पहाड़ के ऊपर बना ऊपर में है उसको भी नीलगिरी कहते हैं, वो पर्वत वो भी छोटा पर्वत है, उस पहाड़ श्रेणी को भी वहाँ नीलगिरी कहते थे। बा प्रभुपाद जी कहते मलेशिया में भी पहले मड़ाए जो चंदन होता था। गजपति राजा पुरी के राजा क्या करते थे, जहाज भेजते थे पुरी से, समुद्र में जहाज भेज के मलेशिया, यहाँ से चावल, यहाँ से चावल गेहूँ ये सब लेके जाते थे, सब्जियाँ लेके वहाँ ट्रांसफर करते थे और वह उसके बदले में वहाँ से चंदन लेकर आते थे जगन्नाथ जी के लिए। इसलिए गजपति राजा चंदन मलेशिया से ला के स्टक कर रखते थे और गर्मी के टाइम में जगन्नाथ जी के शरीर में ये मड़ाए जो चंदन को लेप दिया जाता था। और गोपाल को पता गोपाल और जगन्नाथ में क्या फर्क है, तो इसलिए कहे कि देख मड़ाए जो चंदन कहाँ मिलेगा भी मैं एड्रेस बताता हूँ। मड़ाए जो आना जाया नीलाचल हईते, नीलाचल में जाना पड़ेगा, पुरी में जाकर जगन्नाथ जी के शरीर में जो मड़ाए जो चंदन लगाता है उनको वहां से मांग के लाना पड़ेगा है। नीलाचल हईते अन्य हईते न है, तुम बोला कि किसी ब्रजवासी को भेज देगा, दो चार ब्रजवासी को भेज देगा वो जाके ले आएंगे, ये भी नहीं चलेगा। अन्य हईते न है तुम ही चल त्वरिते, तुमको ही जाना पड़ेगा, ये कार्य दूसरे के द्वारा नहीं होगा है। माधवेंद्रपुरी प्रेम में बिहोड़ हो गए, लगभग 80 साल से ज्यादा उम्र में हो गए, 87-88 साल उम्र में थे, लेकिन फिर भी गोपाल मुझे कौन क्या मांग रहा है, चंदन मांग रहा है गोपाल, चंदन लेके आऊंगा मेरे गोपाल के लिए, गोपाल मुझे कितनी बड़ी सेवा दी है। बड़े प्रेम से बिहोड़ हो गए, ऐसे चिंतन करते थे गोपाल की सेवा किसको दूंगा, मैं तो जाऊंगा चंदन लाने, गोपाल की सेवा कौन करेगा। तुरंत बंगाल से आए दो बंगाली ब्रह्मचारी पहुंच गए, जाकर प्रणाम किए माधवेंद्र को, प्रमाण प्रणाम करके बोले कि हम आपके शिष्य बन के आपके पास में रहने आए हैं। तो माधवेंद्र समझ गए यही सारे गोपाल का ही प्लान है, तो इसलिए वो दोनों बंगाली ब्रह्मचारी थे नष्टिक ब्रह्मचारी, इनको दीक्षा देकर गोपाल की सेवा दे दी है। इसलिए कहते कि बेटी का सेवा सब समय कौन करते हैं, किसी भी मंदिर में जाओगे सब पुजारी मिल जाएंगे, कहाँ के सब पुजारी कहाँ के होते हैं, आए बंगाल के ही होते हैं, जाइए देखो किसी मंदिर में सारा वर्ल्ड में ढूंढो सब पुजारी सब जगह बंगाल के ही होते हैं। क्यों पहला शुरू कर दिया ना माधवेंद्रपुरी, सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु परम गुरु माधवेंद्रपुरी ने ये दो बंगाली ब्रह्मचारी को दीक्षा देकर इनको ब्राह्मण बनाया, उनको पहले सेवा दिए, किसका, गोपाल का सेवा दिए। ब्रजवासी इतने थे किसी ब्रजवासी को सेवा दे के चले जाते थे, नहीं किसी ब्रजवासी को सेवा नहीं दिए, ये बंगाली ब्रह्मचारी दोनों को दीक्षा देकर उन्हीं को सेवा दिए गोपाल का, बोले मैं आने तक सेवा करूँ। तो इसलिए वो दाना दोनों बंगाली ब्रह्मचारी सेवा से गोपाल की सेवा उनको दो चार दिन सिखाए कैसे करना क्या कैसे, वो सिखा के फिर चल दिए पदों में। हाँ उस समय ट्रेन बस कुछ था, चलते चलते गए, कैसे गए ना बंगाल होकर, फिर पहले बंगाल में गए, वहाँ से निकाले, यहाँ से गोवर्धन से निकालते निकालते नेशनल हाईरोड अभी जा रहा है ना सीधे कलकत्ता से, रोड में सीधे जाए के, उस समय नेशनल हाईरोड नहीं था, जंगल के रास्ते में चलते चलते अकेले पहुँचे। इसलिए बंगाल में पहुँच कर बहुत लोगों को भक्त बनाए, जितनी भी वरिष्ठ गौर भक्त है सब इनके शिष्य है। माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य को शिष्य बनाए, अद्वैताचार्य भी इनके शिष्य है, शिवास ठाकुर पुंडरी की विद्यानिधि, जितने वरिष्ठ भक्त सब वहाँ बंगाल में देखेंगे, जो कि ये सारे जगन्नाथ मिश्र आदि सभी इनसे ही दीक्षा लिए, किन से, माधवेंद्रपुरी सभी को भक्त बनाकर सभी को दीक्षा देकर शिष्य बनाते बनाते अद्वैताचार्य को आदेश दिए कि तुम्हारे घर में सबसे राधा रानी को भी कृष्ण के साथ में पूजा करना है, इसके पहले कोई राधा रानी की कृष्ण के साथ पूजा नहीं करता था है। इसलिए माधवेंद्रपुरी आचार्य हैं जिन्होंने सबसे पहले कृष्ण के साथ में किसकी पूजन प्रारंभ कराए, राधा रानी की पूजा, इसके पहले कोई नहीं करता था। इसलिए माधवेंद्रपुरी अपने शिष्य अद्वैताचार्य को आदेश दिए कि तुम्हारे घर में श्यामा सुंदर के साथ में राधा रानी का भी पूजन होना चाहिए। इसलिए राधा श्याम सुंदर की सबसे पहला पूजन अद्वैत भवन में, अद्वैत आचार्य के घर में प्रारंभ हुई थी। किसके आदेश से? माधवेंद्रपुरी के आदेश से। है माधवेंद्रपुरी ये भी कहे कि सीता ठाकुरानी को भी दीक्षा होना चाहिए, और दीक्षित व्यक्ति के हाथ से कृष्ण नहीं खाते, ऐसे कहकर उन्होंने माधवेंद्रपुरी की तो नहीं सरी, अद्वैत आचार्य को तो दीक्षा दिए थे, फिर उनको भी स्वप्न में दीक्षा दिए। किनको? सीता ठाकुरानी को। तो उन्होंने फिर सेवा अधिकार प्राप्त की राधा श्याम सुंदर की। यहाँ से भ्रमण करते करते रास्ता में ऐसे प्रचार करते करते नाचते नाचते गाते गाते आके पहुँच गए उड़ीसा में। हाँ कहाँ पर पहुँचे? खीरचोर गोपीनाथ, गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे। गोपीनाथ मंदिर में जब पहुँचे शाम के समय हो रहा था, दिन भर कुछ खाए नहीं थे, क्लांत थे तो, लेकिन उनको मांगेंगे नहीं, उनका तो वृत्ति है किसको मांगेंगे नहीं कुछ, गोपाल जो खेत देगा खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे, अपने भजन करते रहते। आगे देखिए शाम के समय, लेकिन देखिए मंदिर का परिवेश बहुत सुंदर परिवेश है, बहुत साफ बहुत क्लीन है, नीट क्लीन सब है, सफाई बहुत अच्छा है। और उस समय शाम के समय गोपीनाथ जी के पास में है भोग लगता है, 12 आटिका, आटिका मैंने क्या समझते हैं, मिट्टी के पात्र में, 12 मिट्टी के पात्र में खीर का भोग गोपीनाथ के पास में चढ़ता है, हैं आरती के पहले खीर भोग चढ़ता है। तो खीर भोग उसमें कुकिंग होकर जा रहा था अल्टर में, माधवेंद्रपुरी इनको पुजारी को भी पूछ रहे थे यहाँ पर क्या क्या भोग लगता है भगवान के पास में, लगता है कि इधर सेवा पूजा बहुत उन्नत स्टैंडर्ड का है, अच्छे आप लोग कर रहे हो, क्या भोग लगाते? बोले कि अभी अभी जा रहा खीर भोग, ये इसको अमृत केली कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृत केली कहते हैं, खाली ना अमृत केली ना नहीं, ये अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होता है, ऐसा तो भोग तीनों लोक में और कहीं भी कृष्ण के पास में नहीं चढ़ाया जाता है, केवल हमारे गोपीनाथ के पास में यही चढ़ता है। इसको 12 आटिका 12 पात्र में, मिट्टी के पात्र में भरा भरकर है गोपीनाथ जी को अर्पण की जाती है खीर। है ये खीर कैसे बनता है ना, एक एक शेर एक किलो दूध बाय एक 5 पाव दूध, एक लीटर नहीं शेर शेर मापते हैं किलो, तो पर जो एक एक किलो लीटर दूध का अंदर है थोड़ा सा चावल डालते हैं, 20 ग्राम चावल बस, वो सब दूध के साथ, दूध के साथ में पूरे मिल जाता है चावल, ऐसे ऑर्डिनरी चावल नहीं है वो, चावल बहुत सुगंधित, वो चावल यदि एक मुट्ठी चावल यहाँ रखेगा ये पूरे रूम पूरा महक जाएगा है उसके सुगंध से। तो चावल स्पेशली गोपीनाथ की खीर के लिए गोपीनाथ की खेती में ही बनाया जाता है, बाजार से खरीद के नहीं लाते, वो चावल वहीं उगता है, वहीं धान उगा कर चावल बनाते हैं, प्रत्येक साल स्टक रखते वही चावल थोड़ा थोड़ा खीर बनता है। तो वो खीर फिर उसमें हाँ दूध में दूध पानी नहीं डालते, दूध के अंदर वही चावल थोड़ा डालते हैं, चावल उगला दूध के साथ उगाल उगाल के उगाल के पूरा राबड़ी जैसे बन जाता, उनमें फिर इलायची आदि है का जो अन्य सो मसाला डाल के सुगंधित बनता है। तो वो खीर 12 आटी का भोग लगता है, इसको अमृत कली कहते हैं, ये जगत में और कहीं भी कृष्ण की फास में ऐसा भोग नहीं लगता। माधवेंद्रपुरी सोचे ये भोग कैसा टेस्टी होता होगा, यदि मुझे भी थोड़ा, मैं तो मांगूंगा नहीं, और जाचित भाव से यदि थोड़ा सा चखने मिल जाए तो मैं ऐसा खीर फिर बनाऊंगा, किसके लिए? मैं जब गोवर्धन जाऊंगा मेरे गोपाल के लिए भी ऐसा ही खीर फिर प्रस्तुत करूंगा। ऐसा चिंतन करके ही तुरंत सोचने लगे, अरे मैं धोखाबाज हूं, औजाचित प्रति ले रखा हूं, लेकिन मन में सोच रहा हूं कि चखने के लिए, अभी भोग बनने जा रहा है, भगवान के पास में चढ़ने जा रहा है, खाने की इच्छा तो मन में कैसे आ गया है, कर्मेंद्रियों को संयमित करके रखा हूं, लेकिन अंतकरण में मैं सोच रहा हूं खाने का, ठीक है मुझे धिक्कारते हुए बहुत रोने लगे हैं। और उसी समय खीर भोग अर्पण हो गया, खीर भोग पुजारी लोग सब अंदर ले गए अल्टर से निकाल के, और आरती शुरू हुआ, आरती दर्शन करके ही स्वयं को धिक्कारते हुए तत्क्षणात स्थान छोड़ के लगभग 1 किलोमीटर दूर में आज भी आए, वहां सब्जी मार्केट में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बैठ के कहे कि मैं हरि स्थान में आज बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं खाने की इच्छा मेरे अंतकरण में कैसे आ गया चखने की, यदि वो अपना इंद्र तृप्ति के लिए नहीं था, गोपाल को ऐसा खीर खिलाएंगे इसलिए इच्छा हुई थी, लेकिन फिर भी अपने को अपराध ही समझते हुए बैठकर कहे कि हरि स्थान है अपराध है तारे हरि नाम, तो जप माला लेकर जोर जोर से जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से है जपा करते थे, पूरी रात बीत गया, नहीं सॉरी अर्धरात्रि हो गया, 12 बजे के बाद जो हेड पुजारी जाकर सो रहा था गोपीनाथ उसको जगा, ए गोपी उठो उठो पुजारी उठो। देखिए गोपीनाथ को भी तो गोपीनाथ स्वप्न में भी आए नहीं थे, आज क्या हो गया? बोले देख पुजारी एक भक्त आज मेरे मंदिर में पधारा था, तुम लोग पहचाना नहीं, उसके नाम माधवेंद्रपुरी है, ये तीनों लोक में उसके समान मेरा कोई भक्त नहीं है, उसी के प्रेम में बस होकर मैं गोवर्धन में गोपाल के रूप में प्रकट होकर सेवा पूजा स्वीकार किया, मेरा शरीर बहुत उत्ताप होने कारण मैं इसको चंदन लाने के लिए भेजा, पूरी जा रहा है वो चंदन लाने, लेकिन रात्रि में यहाँ विश्राम, आज रात में विश्राम कर रहा है, लेकिन देख उसकी अजाचित प्रति है, वो मांगता नहीं है खाने के लिए किसी को, लेकिन आज भूखा है सुबह से, लेकिन शाम के समय तुमने जब इसको खीर के बारे में बताया, खीर भोग के बारे में, वो सोचा कि ऐसा ही खीर मैं गोपाल को लगाऊंगा यदि मुझे थोड़ा अजाचित भाव से चखने मिल जाएगी, लेकिन इसी भावना को अपराधी सोचकर स्वयं को रोते रोते वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, रो रहा है, मेरे नाम संकीर्तन कर रहा है, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ, मैं एक खीर का पात्र, तुम लोग काले झगड़ा कर रहे थे, वो 12 पाती का पात्र से तुमको 11 पात्र मिला, 11 पात्र और एक पात्र नहीं मिला था, तुम लोग झगड़ा किया था, कोई डोनेशन लेकर किसी के अपना पार्टी को दे दिया है, आप लोग झगड़ा करके सब चले गए था, लेकिन वो पात्र को तो असलियत में मैंने छुपा के रखा, किसके लिए? माधवेंद्र के लिए है, माधवेंद्र कारण ये छुपा के रखा, धड़ार अंचले, जो अनुवाद करते हैं इसके धड़ा का अर्थ, ये धोती जो पहनते पुजारी लगते हैं साउथ में बड़ा बड़ा बोडर होता है, बड़ा बड़ा बोडर होता है ना, उसी को कहते धड़ा, धड़ार अंचले, गोपीनाथ की जो धोती पहनते प्लेन नहीं पहनते, उसका धड़ा होता है, उसका अंचल बड़ा बड़ा अंचल होता है, तो गोपीनाथ कहते कि धड़ार अंचल में छुपाया, अर्थात गोपीनाथ ऐसे दोनों पैर का ऐसे ही छंदा प्रचर खड़े रहते, दोनों पैर के बीच में ही पात्र को रखकर उसके ऊपर अपना धोती को ऐसा डाल दिए थे, लेकिन हमारा हिंदी ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़, लेकिन यदि वहाँ जाके पूछोगे पुजारियों को कैसे कहाँ पर छुपा के रखे थे, वो बताएगा, गोपीनाथ जी दोनों छंदा चरण, दोनों चरण के बीच में ही रख दिए पात्र को और उसके ऊपर अपने धोती को ऐसा डाल दिए, और पुजारी देख नहीं पाए, तो कहे कि देखो वहां पर छुपा के रखा, धड़ार अंचल है, मेरा धड़ा का अंचल, मेरा अंचल का नीचे धोती को ऐसा निकाल देगा ना, दिखाई पड़ेगा, जाओ धूप हो पुजारी तो हाँ, कहा कि जाओ आओ अभी अल्टर खोलो, अल्टर खोल के पात्र को, खीर की पात्र को लेकर माधवेंद्रपुरी को अर्पण करो, यही तेरी सेवा है, तू महाभाग्यवान है। पुजारी तो जग गया, बोला कि धन्य धन्य, ऐसा कौन सा भक्त आ गया, इतनी पीढ़ी पीढ़ी हमारे सेवा करके आए गोपीनाथ की, गोपीनाथ कभी हमसे बातचीत नहीं किया था, कभी हमें ऐसे स्वप्न में दर्शन नहीं दिया था, आज ये भक्त माधवेंद्र के लिए उसको आना पड़ा, हमको दर्शन देकर बोलना पड़ा, हमारे साथ बातचीत करना पड़ा, धन्य धन्य माधवेंद्र, ऐसे कहकर पुजारी ने भी वो भी बिहोल हो गया प्रेम में, रोते रोते आकर अल्टर खोला, कपूर लगाया, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, स्विच दे देगा, ऐसा नहीं था, कपूर जलाया, कपूर जलाकर देखा गोपीनाथ जी तो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कहे थे ऐसे ही उनके छंदा चरण के बीच में ऐसे ही धोती को थोड़ा ऊपर को उठाते ही दिखाई पड़ा, क्या खीर के पात्र को वहां से निकला, निकाल कर सिर में धारण करके गोपीनाथ को प्रणाम करके आया, अल्टर को फिर लग के बोला, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, कौन है भाग्यवान माधवेंद्रपुरी, तुम्हारे लिए हमारा गोपीनाथ आज खीर चोरी किया है, खीर चोर बन गया है, पहले तो माखन चोरी करता था ब्रज में, आज क्या चोरी किया, खीर चोरी किया है, कौन है भाग्यवान व्यक्ति माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, जिसके नाम माधवेंद्रपुरी, ये खीर की पात्र लेकर भक्षण करो, गोपीनाथ तुम्हारे लिए इसको छुपा के रखे हैं, चुराए चुरा चुरा लिए थे हैं, आज से हम इनको और गोपीनाथ नहीं कहेंगे, आज से इनको हम क्या कहकर पुकारेंगे, खीर चोर गोपीनाथ कहेंगे, हैं चोर कैसे बन गए, अरे सारे चीज जिनसे वो जितनी भी पदार्थ है संसार में किसका है, ईशा भाष्य इदम सर्वम जत किंच जगत्याम जगत, जो देखते सब कृष्ण का है, फिर चोर कैसे बन गए? क्यों चोर कहे इनको? हाँ, किसी ने गोपीनाथ को चोर कहा गया? भगवान का सबका पर अधिकार है, प्रसाद के पर नहीं। जो खा लिए स्वयं, खा लेने के बाद तो महाप्रसाद हो गया, ने प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया तो प्रसाद का अधिकार किसका है? भक्त का। अरे प्रसाद को खाने के बाद फिर इसी को चुरा लिए, उसको छुपा लिए, इसीलिए चोर कहे हैं। प्रसाद का अधिकार नहीं भगवान की, प्रसाद का अधिकार भक्तों की है। तो इसलिए खीर चोर ऐसे जो चाह रहा था रात को 1 बजे, तो उधर कोई था नहीं, अकेले माधवेंद्रपुरी बैठकर वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। वो वृक्ष आज भी अंतर्ध्यान हो चुका है, जहाँ पर माधवेंद्रपुर की समाधि है उसी पास में, बाहर में वो वृक्ष था विशाल बट वृक्ष, आज अंतर्हित हो चुका है, वहीं बैठे थे वो है। तो वो बाप मैंने खीर के पात्र को लेकर देखे, माधवेंद्रपुर देखे, उनके नाम बार बार लिया जा रहा, तो हाथ जोड़कर खड़े थे दैन्यता से। तो उन्होंने जाकर कहे कि आप माधवेंद्रपुरी हो? बड़े दैन्य तो बोले, हाँ मैं वही अधम हूँ, महापापी हूँ, हाँ जगाई माधाई होते आमी से पापिष्ठ, पुरुषे कीट होते आमी से लघिष्ठ, महे न निर्घुण्य अपा केवा दया करे, एका नित्यानंद बिना जगत संसारे, कहकर रोने लगे कि मेरे मैं सवार पापी, ये संसार में कोई नहीं है। पुजारी को रहा नहीं गया, जोर जोर से रोने रोते बोले, क्या दैन्यता, ऐसे दैन्यता में कहीं देखा नहीं, इतनी महान भक्तों गोपीनाथ मुझे कहा कि तीनों लोक में तुम्हारे समान भक्त उनकी कोई नहीं है, तुम माधवेंद्रपुरी हो, तुम आपने को ऐसे कह रहे हो, तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने खीर के पात्र चोरी करके रखा है, ले खीर के पात्र को, प्रसाद को, महाप्रसाद आस्वादन करो। कहा कि पात्र रखा और प्रणाम किया, वो प्रणाम करते ही पुजारी माधवेंद्रपुरी परस्पर को प्रणाम किए, चरण स्पर्श करने के लिए प्रयास किए, लेकिन माधवेंद्रपुरी बड़ी धन्यता से कहे कि प्रभु बड़ी कृपा की है, गोपीनाथ मेरे लिए चोर बन गए। वो बहुत जोर से रोने लगे। पुजारी कहा कि आप ये खीर प्रसाद को सेवन करके फिर सुस्थ हो, सुबह सुबह मंगला आरती में आना, मैं जा रहा हूँ, भाई 1 घंटा मेरे को रेस्ट होगा कि नहीं, स्नान करके मेरे मंगला आरती में आएंगे, मंगला आरती में आना, फिर मिलेंगे मंगला आरती में। कहा कि पुजारी चला गया और माधवेंद्रपुरी और खीर को पूरे दिन तो भूखे ही थे और वो खीर को आस्वादन किया है। खीर को आस्वादन करके ही खीर पात्र को जो इसका जो टुकड़े रहा उसको धो के फिर इसको टुकड़े 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 छोटे छोटे टुकड़े बनाकर अपने जो उत्तरी में इसको क्या किए, बांध लिए हैं। कहे कि यदि मैं यहाँ पर रहूँ प्रतिष्ठा बढ़ेगा, हजार हजार लोग सुबह आएंगे, कहेंगे माधवेंद्रपुरी अरे व्यक्ति आया जिसके लिए गोपीनाथ ने खीर चोरी किया, फिर मेरे प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मेरी पूजा होगा, पूजा मान प्रतिष्ठा वैष्णवों के लिए सुअर विष्ठा, ये पूजा मान प्रतिष्ठा प्राप्त के लिए मैं यहाँ रहना ठीक नहीं। कहकर तुरंत ही उस स्थान से वहीं गोपीनाथ जी के चक्र को, मंदिर के चक्र को, पताका को प्रणाम करके ही सीधे पुरी के मार्ग में चल दिए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह दे कि प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगते विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। कहते कि प्रतिष्ठा नहीं चाहता, वो प्रतिष्ठा उसी के पीछे भागता है। जो पूजामान प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई रहता तो उसको नहीं मिलता है, जो नहीं चाहता उसी के पीछे भागते हैं पूजामान प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा भये पूरी जाए पड़ाइया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गोड़ाइया। माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा नहीं चाहता था, लेकिन इनके पीछे प्रतिष्ठा भाग रहे हैं, पूजामान प्रतिष्ठा कृष्ण भक्त की रूप में है, इतनी महान भक्त के रूप में। पूरी में पहुंचने के पहले वहां व्याप्त हो गया था मैसेज, अरे एक माधवेंद्रपुरी कोई भक्त था, उसके लिए गोपाल के रूप में गोवर्धन में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, वो आते आते चंदन लेने के लिए आ रहा था पूरी, और मार्ग में गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर भी चोरी किया है। सभी पुजारी लोग बातचीत कर रहे पहले से ही। माधवेंद्रपुरी गए, बोले अरे पहले ही इस खबर यहाँ कैसे फैल गया, सो बातचीत कर रहे भी क्या करूँ, क्या छुपा भी नहीं सकते हम, क्या चंदन लेने, यदि मैं स्वयं को छुपाऊंगा और चंदन भी कैसे लेके जाऊंगा गोपीनाथ ने गोपाल के लिए। लेकिन इनका सहज प्रेम तो है, गोप जगन्नाथ जी के सामने जाते ही वो उन्मत्त होकर अपने आप नृत्य कीर्तन करने लगे, नाचने लगे हैं अष्टसाधिक विकार के साथ, जैसे गौरांग महाप्रभु नृत्य किए थे सब, बहुत उन्मत्त। दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, कदावर लोक से हृदय तदा लोक कातरम, दैत भ्राम्यति किं करोमि हम। हे गोविंद, हे गोपाल, हे जगन्नाथ, प्रेम में विवल होकर उन्मत्त नृत्य करते करते बार बार पछाड़ खा के गिरते थे। ऐसे अद्भुत नृत्य देखकर पुजारी लोग ने समझ कि भरे यही माधवेंद्रपुरी होगा, ऐसा नृत्य तो कभी देखे नहीं थे हम। पूछो पूछो, कोई पुजारी लोग आके पूछा, अरे तुम माधवेंद्र, आपका नाम माधवेंद्र है ना क्या? तो बोलना नहीं चाहते, लेकिन चंदन भी लेना है। तो बहुत संकोची से होकर कहे कि हाँ हाँ, मैं वही अधम महापापी महान अधम माधवेंद्र हूँ, मेरे गोपाल के लिए चंदन लेने के लिए आया हूँ। गोपाल ने मुझे भेजा कि आप लोग ये गर्मी के सीजन में चंदन जगन्नाथ जी के शरीर में जो चंदन लगाते हो, उस चंदन से थोड़ा मुझे भी दो, ये चंदन लेकर मेरी गोपाल शरीर में लगाएगा। ये चंदन यात्रा महोत्सव महाराज इंद्रदिम्न ने ही प्रारंभ किए थे, कहाँ? गोपीनायन जगन्नाथ जी के पास में। जगन्नाथ जी को प्रकट करने के बाद, जगन्नाथ जब प्रकट हुए तभी जगन्नाथ जी की सेवा पूजा कैसे करना है जब पूछे, तो व्रत प्रत्येक मास के कौन सा व्रत होना चाहिए जो बता रहे थे। जगन्नाथ जी ने स्वयं कहे कि वैशाख महीना में गर्मी के सीजन प्रारंभ होते ही शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया से लेकर पूरे गर्मी का सीजन मेरे शरीर में क्या करते रहना, चंदन का लेप करना है, मलय जो चंदन मेरे शरीर में लेप करते रहना। इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी ने आदेश दिए थे, किसको? महाराज इंद्रदिम्न को। इसलिए महाराज इंद्रदिम्न ने चंदन यात्रा महोत्सव सत्य युग से प्रारंभ किए थे, जगन्नाथ जी के पास जगन्नाथ के शरीर में चंदन लेप हो रहा था। तो इसीलिए गोपाल ने भी कहा नीलाचल जाकर वहीं से चंदन लाओ। मलय जो आना जाया नीलाचल है, नीलाचल में जाओ, जगन्नाथ जी के शरीर में जो मलय जो चंदन लेप दी जाती उसी चंदन लाना, लाकर मेरे शरीर में लेप देना है। इसलिए पुजारी फिर माधवेंद्रपुरी से पुजारी लोग जो देखे यही माधवेंद्रपुरी, इनको तो शून्य में उठा लिए पूरा पुजारी लोग, यही है माधवेंद्रपुरी, यही है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्र इतनी प्रसाद, जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत लाकर दिए, खाओ प्रसाद खाओ, जगन्नाथ जी का प्रसाद तो कम नहीं है, और बस बोले हम जानते, हमको पता लगा आप अजाचित बुद्धि रखे हो, मांगते नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें दे रहे, जितने खाना खाओ सब आए। तो प्रसाद खा के बड़ा प्रसन्न सुस्त हुए, लेकिन माधवेंद्रपुरी को लेकर राजा के पास में गए, राजा को कहकर जगन्नाथ जी के गोदाम से एक महान चंदन का अर्थ 40 किलो नहीं, 37.5 है, वो शेर में माप जाता था उसे मोहन का है, तो लगभग एक महान चंदन और 20 तुला कर्पूर, चंदन के साथ कर्पूर भी घिसना पड़ेगा, कर्पूर रह के घिसना जाता चंदन, खाली चंदन घिसते हैं, चंदन के साथ कर्पूर डालते ना, 20 तुला कर्पूर और चंदन दिए। कह के लेकिन ये तो इतने वृद्ध है, इसको लेके कैसे जाएंगे? इसलिए दो सेवक भी राजा के में, एक ब्राह्मण और एक सेवक दिए, दो सेवक दिए साथ में जो चंदन को लेकर चलेंगे साथ में, किसकी? माधवेंद्रपुरी के। राजा ने पत्र भी लिख के दिया सब चुंगी, क्योंकि राजा ने बोला कि मैंने इनको सब दान दिया है, कोई भी चुंगी गेट में इनको इनसे कोई चार्ज नहीं करेगा, टैक्स नहीं मांगेगा, इसलिए पत्र भी राजा ने लिख कर दिया। और इस प्रकार चंदन को लेकर नीलाचल पूरी धाम से फिर चल दिए माधवेंद्रपुरी। आते आते आ रहे थे तो लेकिन फिर रास्ते में सोचे कि गोपीनाथ जी ने इतना मेरी उपकार किया, मेरे लिए खीर चोरी करके खाया है, अभी जा रहा हूँ तो मैं वृंदावन चले जाऊँगा, रास्ता में तो एक बार और गोपीनाथ जी को दर्शन करके प्रणाम करके चलूँ, ऐसे कह के शाम के समय फिर पहुँच गए। गोपीनाथ की मंदिर पहुँचते ही पहचान लिया वो हेड पुजारी, बोला ए यही यही आई गया यही माधवेंद्रपुरी, यही माधवेंद्रपुरी, अरे कौन माधवेंद्रपुरी, कौन माधवेंद्रपुरी, सास जमा हो गए लोग है, हजार लोग बोले यही है, इसी के लिए गोपीनाथ चोरी किया था, इसी को मेले की खीर के पात्र रात में दे के आया था, यही है माधवेंद्रपुरी। और सब पुजारी लोग घिर घे पूरा आकर जय माधवेंद्रपुरी 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 जाए। जो जस प्रतिष्ठा नहीं चाहता उसकी जस प्रतिष्ठा अपने भगवान ने अरेंज कर देते हैं। तो बाद में कहे कि पुजारी लोग ने भोग लगा उतार रहा था, अब 12-12 आटी का भोग लागे उनके सामने रख दी, गोपीनाथ का 12 आटी का खीर सब ले लो, तुम खाओ, पता नहीं उस दिन तो हमको आपको पहुँचाने नहीं थे, गोपीनाथ फिर चोरी कर लिया और कुछ करेगा, अभी आप सारे 12 आटी का भोग आपका है। तो माधवेंद्रपुरी हंसने लगे, बोले क्या करूँ, तो खोटे खुद रखे और दोनों बतरे तीन आटी का भोग तीनों लोग थे, बोले हम खाएंगे आप लोग सो। तो रात्रि को विश्राम कर रहे थे, रात्रि में जब विश्राम कर रहे थे, विश्राम में फिर रात को स्वप्न में आ गए गोपीनाथ, हैं गोपीनाथ ने सॉरी गोपाल स्वप्न में आए, गोपाल स्वप्न में आकर कहे कि देखो माधवेंद्र कि गोपाल जी को चिंतन आ गया, बोला अभी तक तो उड़िया उड़ीसा का बॉर्डर राजा का बॉर्डर तो अभी थोड़ा देर मेदिनीपुर का आगे खत्म हो जाएगा, इसका बाद में चंदन सब लेके जाएगा कैसे मुसलमान लोग छीन ले गए इससे, मुसलमान के राज्य से वो आएगा, और इसलिए गोपीनाथ को मैंने गोपाल को चिंता न हो गया। गोपाल ने स्वप्न में आके कहा कि देखो माधवेंद्र हैं ये गोपीनाथ का शरीर और मेरा शरीर में कोई अंतर नहीं है, हैं गोपीनाथ आमार है एक ही देह है, हम दोनों का एक ही शरीर है, इहा के चंदन देले मोरो ताप होबे क्षय, ये गोपीनाथ का शरीर मेरा शरीर कोई अंतर नहीं, हम एक ही व्यक्ति है, नंद के लाला है, ये गोवर्धन में मैं गोपाल के रूप में हूँ और इधर गोपीनाथ के रूप में हूँ, इसलिए तो चंदन को इतनी दूर कहाँ लेके आओगे गोवर्धन तक, तुम वहीं पर यहाँ के चंदन देले मेरा ताप मोरो ताप होबे क्षय, यदि वे गोपीनाथ के शरीर में चंदन को तुम घिस के लिपोगे चंदन भेष कराओगे गोपीनाथ जी को, ये गोवर्धन में भी मेरा शरीर शीतल हो जाएगा, इसलिए दुखी मत होना माधवेंद्र, हाँ तुम मेरे आदेश को पालन करके ही ये चंदन वही लेपन करो। माधवेंद्रपुरी को वही मंदिर के प्रांगण में ही सोए हुए थे, यदि भगवान के मंदिर में सोना मना है लेकिन विशेष अंतरंग भक्त होने के कारण पुजारी लोगों ने कहे कि आप तो गोपीनाथ का ही आदमी हो, आप यही विश्राम कर सकते हो, वहीं विश्राम किए थे, तो इसलिए सुबह सुबह सारे पुजारी को बुलाकर माधवेंद्रपुरी ने कहे कि देखो पुजारी लोग मुझे काल स्वप्न में मेरे गोपाल आया और मेरे गोपाल कहता कि ये गोपीनाथ और गोपाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही ब्रज की मैं क्या नंद की लाला है, जसोदा दुलाल है, ये कहा कि मुझे ये चंदन को यहीं पर घिसकर काली अक्षय तृतीया आने वाला है और अक्षय तृतीया से ये चंदन का लेप देना गोपीनाथ के शरीर में, जब गोपीनाथ के शरीर में हम चंदन के लेप देंगे मेरा गोपाल का शरीर भी वहाँ शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा है। पुजारी लोग ने बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि ये पुजारी लोग ने बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि अभी गर्मी का सीजन में क्या चंदन लेप दिया जाएगा किसके शरीर में, गोपीनाथ के शरीर में चंदन लेप लगे, इसे पुजारी लोग ने बड़े प्रसन्न हो गए हैं कि इसलिए पुजारी लोग ने कहे कि माधवेंद्रपुरी कहे कि देखो मेरे पास तो मेरे पास दो सेवक है, ये चंदन घिसेंगे तो आप लोग कुछ और दे दो और सभी लोग एक साथ में मिल मैंने यदि किसको किराया चाहिए तो मैं किराया दे पैसा मेरे पास है पैसा दे दूंगा और चंदन घिसे, इस प्रकार सो पुजारी लोग ने भी बड़े उत्साह के साथ उनके साथ मिल गए और चंदन घिसने लगे, चंदन घिस के प्रत्येक दिन अक्षय तृतीया से लेकर जब तक चंदन खत्म नहीं हुआ तब तक उनके शरीर में चंदन लेप देते रहे गोपीनाथ के शरीर, लगभग दो महीना चतुर्मास्या प्रारंभ होने तक आषाढ़ी पूर्णिमा तक प्रत्येक दिन चंदन लेप देते रहे, उसके बाद वर्णन आता कि माधवेंद्रपुरी फिर पुरी गए, पुरी से फिर वापस आकर और जा नहीं पाए कहाँ गोवर्धन तक पहुँच नहीं पाए, वही गोपीनाथ के चरण में ही वही महासमाधि नित्य लड़ा में प्रवेश कर गए थे। इस घटना को मैं बहुत ब्रीफली कहा हाँ, लेकिन ये कहानी जो है इसको कौन कहा कौन सुनने वाला है, ये कहानी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने गुरु ईश्वरपुरी से श्रवण किए थे और इसमें नित्यानंद जो संन्यास लेकर पुरी के मार्ग में जा रहे थे रात्रि में गोपीनाथ में विश्राम किए थे, महाप्रभु के साथ में चार व्यक्ति थे नित्यानंद जगदानंद गदाधर मुकुंद, चार लोग थे, इसलिए महाप्रभु ने इनको श्रवण कराया था, कहते कि गोपीनाथ जी के पास पहुंचकर कहे कि देखो है प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पुरी सम भाग्यवान जगते नाही यार, दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल जार प्रेमे बस हैया सेवा अंगीकार कैल, तीन बारे स्वप्ने आसी जारे आज्ञा कैल, कि माधवेंद्रपुरी के भाग्य के विचार करो किस कह रहे महाप्रभु के नित्यानंद विचार करो, ऐसा भाग्यवान तीनों जगत में कोई नहीं है, जिनकी स्वप्न जिनको स्वप्न में आदेश देकर स्वयं गोपाल प्रकट हुई है, जिनकी प्रेम में बॉस होकर उनकी सेवा स्वीकार की है, तीन तीन बार स्वप्न में आकर गोपीनाथ ने गोपाल इनको इनके साथ प्रेम व्यवहार किए, तीन बार स्वप्न में आए। पहले बार स्वप्न में आकर कहाँ पर है झाड़ी के नीचे लेकर दिखाए, दूसरी बार स्वप्न में आकर चंदन लाने के लिए भेजे, जाओ चंदन लेके आओ, तीसरे बार फिर स्वप्न में आकर कहे कि चंदन यही गोपीनाथ के शरीर में लगाने से मेरे शरीर शीतल हो जाएगा। तीन तीन बार स्वप्न में आए और एक बार तो साक्षात भी दर्शन दिए हैं। पहले बार जो दूध की लोटा लेकर आए थे, साक्षात गोपाल स्वयं रूप में आकर दूध की लोटा दिए थे। इसलिए महाप्रभु कहते कि देखो ऐसे भाग्यवान पुरुष कौन है। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पुर कृष्ण कल्प कृष्ण प्रेम कल्प वृक्षर प्रथम अंकुर है। इनको जोग माया देवी की अवतार भी कई कहते, पूर्णमासी के अवतार कई कहते, कई कल्प वृक्ष के अवतार, लेकिन ये ऑर्डिनरी कल्प वृक्ष नहीं है, कृष्ण प्रेम कल्प वृक्षर है प्रथम अंकुर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कृष्ण प्रेम कल्प तरुर प्रथम अंकुर। माधवेन्द्रपुरी के बिना राधा कृष्ण की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ वही हुआ था, इन्होंने ही प्रारंभ किया। इसलिए ये चंदन यात्रा महोत्सव उन्हीं की साथ संबंधित है। ये गौड़ीय संप्रदाय में चंदन यात्रा की महोत्सव सबसे पहले ही खीरचोर गोपीनाथ मंदिर रेमुणा में प्रारंभ हुई। माधवेंद्रपुरी ने सौहस्त्र में चंदन लिपे, किसके शरीर में, गोपीनाथ के शरीर में। इसके बाद फिर आस्ते आस्ते अन्य अन्य गौड़ीय मंदिर में ये प्रचलित हो गया और प्रभुपाद जी ने हम इस्कन में ये चंदन यात्रा महोत्सव को सर्व जितने भी इस्कन मंदिर है सभी मंदिर में अक्षय तृतीया से कम 21 दिन तक चंदन लिखने का व्यवस्था है। श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय, अक्षय तृतीया की जय, श्रील माधवेंद्र परिपाद की जय, गोपाल गोपीनाथ गोविंद की जय, श्री राधा श्याम सुंदर की जय। आज शाम को चंदन भेष आपको दर्शन मिलेंगे, शाम को 4:30 बजे जो दर्शन होगा उस समय बहुत सुंदर गौर निताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर की चंदन भेष आपको दर्शन होगा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।